यरमिया अध्याय 23। अध्याय 23 में देखिए परमेश्वर किसके विरुद्ध क्या कहता है। यरमिया अध्याय 23 पद 1। उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते और नाश करते हैं। परमेश्वर कहता है वे मेरी भेड़े हैं, परंतु चरवाहे उन्हें पथ भ्रष्ट कर रहे हैं, वरन उनको नाश कर रहे हैं। यरमिया अध्याय 23 पद 2। इसलिए इस्राएल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से यो कहता है, तुमने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली, वरन उनको तितर बितर किया और बरबस निकाल दिया है। इस कारण यहोवा की ये वाणी है कि मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा। ये दुष्ट चरवाहे परमेश्वर की भेड़ों का पोषण नहीं, शोषण कर रहे थे। एक सच्चा चरवाहा भेड़ों के भोजन की चिंता करता है, परंतु बाड़े का टट्टू उनको लूटता खसोटता है। यदि कोई प्रचारक आपसे आर्थिक सहयोग की याचना करे तो निश्चय ही वो आपसे प्रेम नहीं रखता और आपकी चिंता नहीं करता। वे कहते और लिखते अवश्य है कि वे आपके बारे में चिंतित हैं और आपके बारे में सोच ही रहे थे कि परमेश्वर ने उनके मन में आपके लिए एक बड़ा बोझ डाला। भाई सब ठीक तो है, कृपया मुझे लिखकर अपना हाल सुनाए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर के सम्मुख आपकी आवश्यकता को रखूंगा। अपनी आवश्यकता तुरंत ही मुझे भेजे और ये भी ध्यान रखे कि आप इस बार कितना सहयोग भेज रहे हैं। ये सब उनका नाटक है। वे वास्तव में आपके पैसों में रुचि रखते हैं कि आपसे कितना अधिक खींच ले। ऐसे पत्रों में आपकी आत्मा के लिए भोजन नहीं है। परमेश्वर की भेड़ों की ये सच्ची चिंता नहीं है। आपका शोषण परमेश्वर की भेड़ों का शोषण ही इन पत्रों का मुख्य उद्देश्य है। ये सच्चा चरवाहा नहीं है। परमेश्वर कहता है, चरवाहों तुम पर हाय, तुम मेरी भेड़ों को भोजन नहीं देते, तुम उन्हें पथ भ्रष्ट कर रहे हो, तुम उनका विनाश कर रहे हो। जब वे परमेश्वर को लेखा देंगे तो मैं उनके बीच उपस्थित रहना नहीं चाहता। परमेश्वर ने कहा, यरमिया अध्याय 23 पद 3 और 4। तब मेरी भेड़ बकरियां जो बची है उनको मैं उन सब देशों में से जिनमें मैंने उन्हें बरबस भेज दिया है, स्वयं ही उन्हें लौटा लाकर उन्हीं की भेड़शाला में इकट्ठा करूंगा और वे फिर फूले फलेंगी। मैं उनके लिए ऐसा चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे और तब वे ना तो फिर डरेंगी, ना विस्मित होंगी और ना उनमें से कोई खो जाएगी। यहोवा की ये वाणी है। परमेश्वर ने स्पष्ट कह दिया, मैं अपनी तितर बितर भेड़ों को एक दिन अवश्य इकट्ठा करूंगा, उन्हें लाऊंगा और उन्हें ऐसे चरवाहे दूंगा जो सच में उन्हें भोजन देंगे, वे फलवंत होंगे और संख्या में वृद्धि करेंगे। यरमिया अध्याय 23 पद 5। यहोवा की ये वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वो राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। परमेश्वर ये कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा मैं दाऊद में से एक धर्मी डाली पल्लवित करूंगा जो धार्मिकता, न्याय और सच्चाई का राज करेगा। यरमिया अध्याय 23 पद 6। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इसराइली लोग निडर बसे रहेंगे और यहोवा उसका नाम हमारी धार्मिकता यहोवा सित केनू रखेगा। दाऊद से फूट निकलने वाली ये धर्म की डाली कौन है जो पृथ्वी पर धार्मिकता का राज करेगा? यहोवा शुआ जो यहोवा सिद्ध केनु अर्थात येशु होगा। यहोवा सिद्ध केनु येशु मसीह का दूसरा नाम होगा। यही एक पद है जो यहोवा विटनेस वालों को चुपता है, क्योंकि ये पद येशु मसीह के बारे में दर्शाता है। यहोवा सिद्ध केनु नाम को वे केवल पिता के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। वे इस नाम की संपूर्ण रूप से व्याख्या नहीं कर पाते हैं। यरमाया अध्याय 23 पद 7 और 8। सो देख, यहोवा की ये वाणी है कि ऐसे दिन आएंगे जिनमें लोग फिर ना कहेंगे कि यहोवा जो हम इसराइलियों को मिस्र देश में से छुड़ा ले आया उसके जीवन की सौगंध, परंतु वे ये कहेंगे यहोवा जो इसराइल के घराने को उत्तर देश से और उन सब देशों से भी जहां उसने हमें बरबस निकाल दिया छुड़ा ले आया उसके जीवन की सौगंध, तब वे अपने ही देश में बसे रहेंगे। यहां परमेश्वर पुनरुद्धार के उस दिन की चर्चा करता है जो यीशु के पुनः आगमन का दिन होगा। उस दिन स्वर्ग दूतों को भेजा जाएगा कि चारों दिशा से परमेश्वर के चयनित जनों को अर्थात यहूदियों को इकट्ठा करें। वो दिन इसराइल के उद्धार का दिन होगा। परमेश्वर सियोन से मुक्तिदाता का उदय करेगा जो पुत्रों के मन को पितरों की ओर फेर देगा। इसराइल राष्ट्र के लिए वो दिन परमेश्वर के उद्धार का दिन होगा। यीशु फिर से आकर पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा और परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। ये परमेश्वर की घोषणा है कि यरमिया अध्याय 23 पद 9, भविष्यत वक्ताओं के विषय मेरा हृदय भीतर ही भीतर फटा जाता है। आगे का पद वास्तव में देखा जाए तो यरमिया के शब्द है, क्योंकि उसे रोता हुआ भविष्यत वक्ता कहा गया है। भविष्यत वक्ताओं के कारण उसका दिल टूट चुका था। यरमिया अध्याय 23 पद 9 से लेकर 12 तक, मेरी सब हड्डियां थर थराती है, यहोवा ने जो पवित्र वचन कहे हैं उन्हें सुनकर मैं ऐसे मनुष्य के समान हो गया हूं जो दाक मधु के नशे में चूर हो गया हो, क्योंकि ये देश व्यभिचारियों से भरा है। इस पर ऐसा शाप पड़ा है कि वो विलाप कर रहा है। वन की चराइयां भी सूख गई, लोग बड़ी दौड़ तो दौड़ते हैं परंतु बुराई ही की ओर, और वीरता तो करते हैं परंतु अन्याय ही के साथ, क्योंकि भविष्यद्वक्ता और याजक दोनों भक्तिहीन हो गए हैं। अपने भवन में भी मैंने उनकी बुराई पाई है, यहोवा की यही वाणी है। इस कारण उनका मार्ग अंधेरा और फिसलाहा होगा, जिसमें वे ढकेल कर गिरा दिया जाएंगे, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि मैं उनके दंड के वर्ष में उन पर विपत्ति डालूंगा। अतः परमेश्वर दुष्ट भविष्यत वक्ताओं और याजकों के बारे में कह रहा था। वे अंधकार के मार्ग पर चल रहे थे, वे नहीं जानते कि वे कहां जा रहे थे। दशा बहुत बुरी थी। मेरा कहने का अर्थ है कि आप बर्फ पर तो चल रहे हैं परंतु आप नहीं जानते कि कहां कदम रखना है, निश्चय ही वे गिरेंगे। यरमिया अध्याय 23 पद 13 और 14, शमरोन के भविष्यत वक्ताओं में मैंने ये मूर्खता देखी थी कि वे बाल के नाम से भविष्यवाणी करते और मेरी प्रजा इसराइल को भटका देते थे, परंतु यरूशलेम के नबियों में मैंने ऐसे काम देखे हैं जिनसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अर्थात व्यभिचार और पाखंड। वे कुकर्मियों को ऐसा हियाव बांधते हैं कि वे अपनी अपनी बुराई से पश्चाताप भी नहीं करते। सब निवासी मेरी दृष्टि में सदोमियों और अमोरियों के समान हो गए हैं, उनकी मुक्ति असंभव है। यरमया अध्याय 23 पद 15 से 17 तक। इस कारण सेनाओं का यहोवा यरूशलेम के भविष्यत वक्ताओं के विषय में यूं कहता है, देख मैं उनको कड़वी वस्तुएं खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा, क्योंकि उनके कारण सारे देश में भक्तिहीनता फैल गई है। सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यत वक्ताओं की बातों की ओर से भविष्यवाणी करते हैं, कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं अपने ही मन की बातें कहते हैं। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे ये भविष्यत वक्ता सदा कहते हैं कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा, और जितने लोग अपने हट ही पर चलते हैं उनसे ये कहते हैं तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी। भविष्यत वक्ता झूठी झूठी बातें सिखाते थे कि जीवन आचरण कैसा भी हो परमेश्वर उन्हें स्वीकार करता है। परमेश्वर स्वार्थ और देहिक लालसाओं पर ध्यान नहीं देता है, वो व्यवस्था के उल्लंघन की चिंता नहीं करता है। यहूदा पर कोई बुराई नहीं आएगी, शांति बनी रहेगी आदि। आज अनेक कलीसियाओं में वचन का प्रभावी प्रचार नहीं है। वहां लोगों को संतावना दी जाती है कि उनकी कल्पनाएं और लालसाएं स्वीकार्य है, और लोग ढाढ़स बांधकर लौटते हैं। वहां पाप का बोध नहीं कराया जाता। वहां परमेश्वर के सामने धार्मिकता और पवित्रता के जीवन का प्रचार नहीं है। दुख की बात तो यह है कि लोगों को दुराचार में भी विश्वास और ढाढ़स बंधाई जाता है। उन्हें झूठी सुरक्षा का आश्वासन दिलाया जाता है। आज अनेक प्रचारक कहते हैं कि नरक नाम का कोई स्थान नहीं है, नरक और स्वर्ग सब पृथ्वी पर ही है। वे नरक के विश्वास का उपहास करते हैं। वे कहते हैं कि मरने के बाद परमेश्वर का न्याय नहीं है, शांति है, शांति, परमेश्वर बुराई का दंड नहीं देगा, कोई बुराई नहीं आएगी। यरमिया अध्याय 23 पद 18। भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है? ये लोग परमेश्वर का वचन तो सुनते थे, परंतु परमेश्वर कहता है वे मेरी संगति में कभी बैठे ही नहीं, तो उन्हें क्या मालूम मैंने क्या निर्णय लिया है। उन्होंने मेरे वचन तो सुने नहीं, वे कैसे इसराइल को मेरे वचन सुना रहे थे। यरमिया अध्याय 23 पद 19 और 20। वह किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है? देखो यहोवा की जल जलाहट का प्रचंड बावंडर और आंधी चलने लगी है, और उसका झोंका दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगा। जब तक यहोवा अपना काम और अपनी युक्तियों को पूरी न कर चुके, तब तक उसका क्रोध शांत न होगा। अंत के दिनों में तुम इस बात को भली भांति समझ सकोगे। आज तो तुम आगे नहीं देख पा रहे हो, परंतु भविष्य में जब पीछे मुड़कर देखोगे तब समझ जाओगे कि ये भविष्यत वक्ता नकली थे, वे धोखा दे रहे थे। ये उस दिन होगा, परमेश्वर कहता है, जब विनाश आ पड़ेगा, परमेश्वर का दंड आ पड़ेगा। उस दिन उन्हें बोध होगा कि ये झूठ कहते थे कि शांति बनी रहेगी और कोई बुराई नहीं आएगी। यरमिया अध्याय 23 पद 21 से लेकर 23 तक। ये भविष्यत वक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो दूर नहीं निकट ही रहता हूं? परमेश्वर कहता है, क्या मैं यहां उपस्थित नहीं हूं? मैं दूर नहीं कि तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकते, या तुम क्या कह रहे हो, मैं देख नहीं सकता। पौलुस ने एथेन के दार्शनिकों से कहा था, प्रेरितों के काम अध्याय 17 पद 23, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूं, पद 28, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। परमेश्वर सर्वव्यापी है, उसकी उपस्थिति से कोई बच नहीं सकता है। यरमिया अध्याय 23 पद 24, फिर यहोवा की ये वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? पाप छिपता नहीं है, परमेश्वर हमारे सब काम देखता है। यदि कोई ये सोचे कि वो या उसके काम परमेश्वर से छिपे हैं, तो वो अपने आप को धोखा देता है। यरमिया अध्याय 23 पद 24 से लेकर 27 तक, क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? मैंने इन भविष्य वक्ताओं की बातें भी सुनी है, जो मेरे नाम से ये कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं कि मैंने स्वप्न देखा है। स्वप्न, जो भविष्य वक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और अपने मन ही के छल के भविष्य वक्ता है, ये बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी? जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरा नाम भूलकर बाल का नाम लेने लगे थे, वैसे ही अब ये भविष्य वक्ता उन्हें अपने अपने स्वप्न बता बताकर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। ये लोग प्रजा को भरमाते रहे थे और प्रजा को परमेश्वर से दूर ले जा रहे थे। यरमिया अध्याय 23 पद 28, यदि किसी भविष्य वक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वो उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वो मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की ये वाणी है, कहां भूसा और कहां गेहूं? आत्मिक क्षेत्र में यदि किसी मानवीय माध्यम द्वारा परमेश्वर के वचन को खोजा जाए तो वो संकट पूर्ण हो सकता है। आप उस व्यक्ति के पास जाते हैं और वो आपके अतीत के बारे में ऐसी बातें बताता है जिससे अन्य और कोई नहीं जानता, और आपका मन राजी हो जाता है कि वो जो कह रहा है उसे वो अपनी आत्मिक शक्ति से जान गया है। कुछ वर्ष पहले एक महिला थी जिसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता थी। वो लोगों के अतीत को प्रकट करती थी। लोग उसकी ओर आकर्षित होते थे क्योंकि उसे एक बड़ी कलीसिया ने संडे स्कूल की शिक्षिका नियुक्त किया हुआ था। एक युवा पास्टर जो बहुत योग्य था, उसने उस महिला की भविष्यवाणी को सुना और उसकी ओर आकर्षित हो गया। हम दोनों ने कई ग्रीष्मकालीन शिविरों में साथ साथ प्रार्थना की थी और वचन पर मनन किया था। उसने उसे समय लिया और उसे भेंट करने उसके घर गया। उस महिला ने उसके और उसकी माता के अतीत के बारे में अनेक बातें बताई तथा उसके जीवन के लिए मार्गदर्शन एवं निर्देश दिए। उस महिला ने उसकी माता से उसकी भेंट करने के लिए उसे आत्माओं के संसार में फंसा दिया। ये पुरुष जो युवकों के लिए परमेश्वर द्वारा प्रभावी रूप से उपयोग में लिया जा रहा था, पथ भ्रष्ट हो गया। वो वचन से दूर हो गया और वचन का पालन नहीं करता था। उस स्त्री ने उसे अपने वरदान द्वारा आत्माओं के जंजाल में फंसा दिया था। उसका वो वरदान परमेश्वर की ओर से नहीं था। देखिए, परमेश्वर और परमेश्वर के वचन को छोड़ अन्य किसी अलौकिक क्रियाकलाप में संकट होता है। कोई आकर कहे कि उसने एक स्वप्न देखा और उसका अर्थ जानना चाहे, तो वो जिसे चाहे अपना स्वप्न सुनाए, परंतु परमेश्वर कहता है, जिसके पास मेरा वचन है वो विश्वास के साथ मेरा वचन सुनाए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें स्वर्गदूतों के दर्शन होते हैं जो उनके विस्तार पर बैठकर उन्हें निर्देश देते हैं। उनकी बातें सुनकर लोग उत्साह से भर जाते हैं। ओह, क्या आपने एंजल्स ऑन असाइनमेंट नाम अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ी है? स्वप्नदर्शी स्वप्न बताएं और जिसके पास मेरा वचन है वो निष्ठापूर्वक वचन सुनाए। गेहूं का भूसा क्या है? परमेश्वर कहता है। हमारे पास परमेश्वर का वचन है जिसमें ना तो कुछ जोड़ा जा सकता है और ना ही उसमें से कुछ घटाया जा सकता है। ये गेहूं है, इसी से आत्मिक विकास होता है। ये आपको परमेश्वर में दृढ़ बनाएगा, ये आपके आत्मिक व्यक्तित्व का बलवंत बनाएगा। आप आत्मिक उत्साह के लिए भटकते फिरते होंगे, परंतु ऐसा आत्मिक अनुभव संकटपूर्ण होता है, ये आपको पथ भ्रष्ट कर सकता है। परमेश्वर का वचन आपको मार्ग पर रखेगा। अलौकिक अनुभव से आप विकास प्राप्त नहीं करेंगे। आप मुझे गलत न समझे, मैं वरदानों और आत्मा के कामों के विरुद्ध नहीं हूं। आत्मा के कामों का प्रदर्शन आश्चर्यचकित करने वाला होता है, मैं भी उन्हें खोजता हूं। जो कुछ भी किया जाए उसे परमेश्वर के वचन से परखना चाहिए। हम अनुभवों को धार्मिक सत्य का आधार नहीं मान सकते हैं। हम धर्म की शिक्षा को परमेश्वर के दृढ़ वचन पर स्थापित कर सकते हैं, ना कि किसी अलौकिक असाधारण घटना पर। मैंने एक बार पढ़ा था कि एक पास्टर ऐसा ही काम करता था। वो दुष्ट आत्माओं की शिक्षा देता था और कहता था कि हम दुष्ट आत्माओं को बांध सकते हैं और नरक में डाल सकते हैं, हमें ये काम सदा करना है। वो कैसे जानता था कि उसमें दुष्ट आत्मा को बांधने का सामर्थ्य है? कि वो कहता है कि एक बार जब वो दुष्ट आत्मा निकाल रहा था, तब दुष्ट आत्मा ने उसे विनती की कि वो उसे गड्ढे में ना डाले। उसको अचंभा हुआ, मुझ में वो सामर्थ्य है? दुष्ट आत्मा ने उससे कहा, हां, तुझ में वो सामर्थ्य है कि मुझे गड्ढे में डाल दे, कृपया मुझे गड्ढे में मत डालना। इस प्रकार आपके पास दुष्ट आत्मा का वचन है। ध्यान दे कि शैतान झूठा है, वरन झूठों का पिता है। आप एक दुष्ट आत्मा की बात को शिक्षा का आधार कैसे बना सकते हैं, जबकि उसका चरित्र ही झूठ है? अब देखिए आप सत्य से कैसे भटक जाते हैं। ये गेहूं का भूसा क्या है? परमेश्वर ने कहा है। यरमिया अध्याय 23 पद 29 से लेकर 37 तक। यहोवा की ये वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वो ऐसे हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? यहोवा की ये वाणी है, देखो जो भविष्यद् वक्ता मेरे वचन औरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूं। फिर यहोवा की ये भी वाणी है कि जो भविष्यद् वक्ता उसकी ये वाणी है, ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी अपनी जीभ डुलाते हैं, मैं उनके भी विरुद्ध हूं। यहोवा की ये वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे वह बिना मेरे आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उसका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध हूं और उनसे मेरी प्रजा के लोगों का कुछ लाभ ना होगा। यदि साधारण लोगों में से कोई जन या कोई भविष्यद् वक्ता या याजक तुमसे पूछे कि यहोवा ने क्या प्रभावशाली वचन कहा है, तो उससे कहना, क्या प्रभावशाली वचन? यहोवा की ये वाणी है, मैं तुमको त्याग दूंगा। और जो भविष्यद् वक्ता वो याजक साधारण मनुष्य यहोवा का कहा हुआ भारी वचन ऐसे कहता रहे, उसको घराने समेत दंड दूंगा। तुम लोग एक दूसरे से और अपने अपने भाई से यूं पूछना, यहोवा ने क्या उत्तर दिया या यहोवा ने क्या कहा है। यहोवा का कहा हुआ भारी वचन इस प्रकार तुम भविष्य में ना कहना, नहीं तो तुम्हारा ऐसा कहना दंड का कारण हो जाएगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा जो जीवित परमेश्वर है, तुम लोगों ने उसके वचन बिगाड़ दिए हैं। तू भविष्यत वक्ता से यूं पूछ कि यहोवा ने तुझे क्या उत्तर दिया। यहोवा का भारी वचन कहने का अपेक्षा ये कहना उचित है, यहोवा ने क्या कहा था, यहोवा ने क्या उत्तर दिया। क्योंकि झूठे भविष्यत वक्ताओं का ये मुख्य संबोधन था, यहोवा का भारी वचन। यरमिया अध्याय 23 पद 38, या यहोवा ने क्या कहा है। यदि तुम यहोवा का कहा हुआ प्रभावशाली वचन इस प्रकार कहोगे, तो यहोवा का ये वचन सुनो, मैंने तो तुम्हारे पास कहला भेजा है, भविष्य में ऐसा ना कहना कि यहोवा का कहा हुआ प्रभावशाली वचन, परंतु तुम ये कहते ही रहते हो कि यहोवा का कहा हुआ प्रभावशाली वचन। आज अनेक लोग कहते हैं, परमेश्वर ने मुझे भारी भोज दिया है, मैं नहीं जानता कि मैं उसे कैसे उठाऊंगा। क्या उन्हें पूरा विश्वास है कि परमेश्वर ने उन्हें भारी भोज दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मती अध्याय 11 पद 30, मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। भारी बोझ तो मनुष्य हम पर डालता है, कभी कभी कलीसिया भी हम पर बोझ डालती है। बोझ तो हम स्वयं ही अपने ऊपर ले लेते हैं। हमें परमेश्वर को दोष नहीं देना चाहिए। परमेश्वर हम पर ऐसा बोझ नहीं डालता कि हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाए। परमेश्वर आप पर ऐसा बोझ नहीं डालता कि आप पीड़ित या दुखी होकर अपने परिवार के लिए उपयोगी न रह जाएं। हम सोचते हैं कि यदि हम ऐसा असहनीय बोझ न उठाएं तो लोग क्या कहेंगे। नहीं नहीं, ये परमेश्वर का दिया हुआ बोझ नहीं है, ये तो कलीसिया और मनुष्य द्वारा दिया हुआ बोझ है जिसे आपने स्वयं अपने ऊपर लिया है, परमेश्वर ने आप पर नहीं डाला है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है, मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। लोग मुझसे कहते हैं, आप इतनी बड़ी कलीसिया का बोझ कैसे संभालते हैं। मैं कहता हूं, मैं नहीं संभालता, ये कठिन काम नहीं है, ये बोझ भारी नहीं है। मैं ना तो कुड़कुड़ाता हूं और ना ही अपना काम अगले दिन पर डालता हूं, ऐसा करने का मेरा मन नहीं करता है, मुझे ऐसा प्रतीत भी नहीं होता। उसका बोझ हल्का और उसका जुआ आसान है। मैं हमेशा लोगों से यही कहता हूं कि मेरे पहले की कलीसिया में 25 लोगों की सेवकाई की अपेक्षा इस कलीसिया की सेवकाई कहीं आसान है। वहां मुझ पर बोझ अधिक था, इस कलीसिया में आराम है। परमेश्वर कहता है कि वो परमेश्वर का भारी वचन जैसी बातें सुनते सुनते थक गया है। वो ये सुनना नहीं चाहता, बस इतना कहो, परमेश्वर ने उत्तर दिया। परंतु ये कभी न कहो, परमेश्वर का भारी वचन। यरमिया अध्याय 23 पद 39, इस कारण देखो मैं तुमको बिल्कुल भूल जाऊंगा और तुमको और इस नगर को जिसे मैंने तुम्हारे पुरखाओं को और तुमको भी दिया है। यदि तुम इस उक्ति का उपयोग करोगे तो मैं तुम्हें, यरमिया अध्याय 23 पद 40, त्याग कर अपने सामने से दूर कर दूंगा और मैं ऐसा करूंगा कि तुम्हारी नाम धराई और अनादर सदा बना रहेगा, कभी भूला ना जाएगा। यदि मैं वहां होता तो अवश्य इस प्रकार के संबोधन से दूर रहता।